सरकार के एस अधिकारी हूँ और इससे पहले मैं कई सेवाओं में रह चुका हूँ। मैं पंचायती राज विभाग में भी था, कोर्ट चूट सप्लाई में था, चकबंदी में था, पुलिस में था और चीनी मिल में था। ये मेरी आठवीं नौकरी है पीसीएस की। ठीक है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया तो फिर मैंने सिविल के एग्जाम फिर नहीं दिए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से था, जबकि पुलिस विभाग में मेरा हुआ था, डिप्टी एस पी में हुआ था, लेकिन मैं गया नहीं। और मैं 2005 बैच है, मैं 2009 में ज्वाइन किया था, तो मैं बीएससी के पद पर भी रह चुका हूँ, मैं डीआरएस के पद पर भी रह चुका हूँ, मैं डायरेक्ट प्रचार के पद पर रह चुका हूँ, संकेत निरीक्षक पाठशाला उत्तर प्रदेश भी रह चुका हूँ और डिप्टी सेक्रेटरी यूपी बोर्ड में भी रह चुका हूँ माध्यमिक में।
अच्छा।
और असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर भी रह चुका हूँ, वहाँ पत्राचार भी मैं देखता था इलाहाबाद में।
हाँ, हाँ।
तो मैं और एसोसिएट डीआरएस के पद पर भी मैं रह चुका हूँ, मतलब विभिन्न पदों पर मैं देख चुका हूँ। तीन साल वहाँ बी एस ए था, जून में जुलाई में मैंने यहाँ ज्वाइन किया। टाइम नहीं करना है, ग्रीन बोर्ड बहुत सी चीज़ें हैं और अच्छा भी मुझे लगता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में और भिन्न भिन्न पदों पर। इसलिए मेरा तो ये उद्देश्य है कि मुझे मेरे पद के अनुरूप या पद के ऊपर जहाँ भी भेज दिया जाएगा तो मैं अपने उस दायित्वों को पूरा करता हूँ।
तो यहाँ डाइट में आपका रोल क्या है?
डाइट में यहाँ का रोल ये है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को हम लोग सुदृढ़ करें। ठीक है, जैसे देखिए डाइट की जो संरचना होती है, डाइट में जो हमारे बीटीसी ट्रेनी आते हैं, प्रशिक्षु आते हैं, वो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं।
हाँ।
दो साल का उनका रहता है, चार सेमेस्टर रहते हैं, सिक्स मंथ के, दो साल का कोर्स रहता है। और हमारे डाइट में जो प्रवक्ता रहते हैं वो हर विषय के प्रवक्ता रहते हैं, जिनका कार्य रहता है कि क्लास चलें, बच्चों को पढ़ाएं, जो भी बीटीसी का कोर्स निर्धारित किया गया, अब ये डीएलएड हो गया है, तो जो भी उसका कोर्स निर्धारित किया गया है सेमेस्टर वाइज कोर्स के हिसाब से उनका पढ़ाएं, कोर्स पूरा कराएं, इसके बाद सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। ठीक है, इसके साथ साथ शिक्षकों में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है तो एक शिक्षक के गुण डेवलप करना। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को अगर पढ़ा लिखा करके नौकरी करने योग्य बना दें, लेकिन जिस विषय में या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके प्रति आपका इंटरनली लगाव नहीं होगा तो हम मन से काम नहीं करेंगे। जैसे हम अपने दैनिक दिनचर्या में देखते हैं कि जिस काम को हमारे अंदर कहते हैं ना लालसा होती है, जिज्ञासा होती है कि ये काम करना है, तो हम जाग के भी करते हैं, भूखे रह के भी करते हैं, प्यासे रह के भी करते हैं। और जिस काम के प्रति हमें लालसा जिज्ञासा नहीं होगी तो चाहे जितना अच्छा इन्वायरमेंट आपको दे दिया जाए आप नहीं करें। तो उसके साथ साथ हमको एक उसको शिक्षक बनाना है। जैसे शिक्षक के जो आदर्श शिक्षक के हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं तो वो उसमें डेवलप करना। भाई बीटीसी का कोर्स तो सभी डाइट करा रहे हैं या बीटीसी का कोर्स तो प्राइवेट संस्थान भी करा रहे हैं, और बीटीसी की पढ़ाई करके या बीएड की पढ़ाई करके या टीएटी पास करके शिक्षक बन ही जाएंगे, लेकिन शिक्षक बनने के बाद अपना आउटपुट वो विद्यालयों में बच्चों को देते हैं कि नहीं देते हैं, जब तक आप अंदर से आपकी आत्मा आपको उत्प्रेरित नहीं करेगी, कैटलीटर का काम नहीं करेगी, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे लोग कहते हैं कि जब डाइट में वरिष्ठ प्रवक्ताओं की पोस्टिंग होती है तो बस एक बार ज्वाइन करने आते हैं, हफ्ते में 15 दिन में एक बार आ जाते हैं, लेकिन मुझको लोग कहते हैं कि मैं जैसे लंच करने गए तो मैं 4 बजे भी आ जाता हूँ, कभी कभी 4:30 बजे आ जाता हूँ। तो यहाँ बाबू कहते हैं कि साहब आपके अभी बीएससी वाली डीएस वाली आदत नहीं गई है कि 4 बजे 5 बजे आप कार्यालय में बैठेंगे, और जब हमारा जाने का टाइम होता है तब आ जाते हैं, आप प्रचार जी को बैठा लेते हैं, तो हम लोगों को भी रुकना पड़ता है। तो ये मेरे अंदर की जिज्ञासा है कि मैं टाइम देख के नहीं काम करता हूँ कि 5 बजे लाइट बंद हो जाएगा तो मैं 4:30 बजे तो घर से ना जाऊँगा। मैं तो सोचता हूँ कि मैं 4:30 बजे 4:45 बजे पहुँच जाऊँगा, मैं 6 बजे तक काम करूँगा। अब बैठेंगे तो कुछ डिस्कस होगा, कुछ चर्चा होगी, प्रचार भी रहेंगे, हम रहेंगे, कुछ प्रवक्ता रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हम मान लीजिए और निकालेंगे, अगर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार अगर हम मान लीजिए कि बीएससी है तो बीएससी का काम 10 से 5 का होता है ऑफिस का, लेकिन जैसे मेरा कार्यशैली है मैं तो 8 बजे तक बैठता था रात में, और शिक्षकों से कह देता था कि आप 9 से 3 जो विद्यालय का टाइम है 7 से 1 आप उस समय विद्यालय में रहिए, मेरे ऑफिस में आइए, जो भी आपको वेतन की समस्या है, एरियर की समस्या है, जीपीएफ की समस्या है, किसी छुट्टी की समस्या है, आप 3 बजे के बाद या विद्यालय बंद होने के बाद आइए। अगर मैं न मिलूँ तो आप कहिए, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूँ। गलत तो नहीं वगैरह।
तो आप टीचिंग करते हैं या कोऑर्डिनेशन करते हैं?
यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था देखना है, ठीक ना, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था देखना। और जहाँ पर हमारे लेक्चरर या मान लीजिए हमारे बच्चों को मान लीजिए कि अच्छी चीज़ें या कोर्स के बारे में या मान लीजिए वैसे कल्चरल प्रोग्राम के बारे में या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई समस्या आ रही है तो हम लोगों को मान लीजिए उनको गाइड करते हैं कि आप ऐसे करिए, और फिर प्रचार से डिस्कस हम करते हैं कि इस ट्रेनिंग को ऐसा कराए। जैसे बहुत सी ट्रेनिंग्स होती हैं, विज्ञान की होती है, गणित की होती हैं, जो लखनऊ के टीचर्स रहते हैं उनके बैच बनाते हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। जैसे अभी इंग्लिश मीडियम विद्यालय की एक ट्रेनिंग आई है 12 से 24 के बीच में शुरू होगी, तो उसको मैंने BSF पत्र भेज दिया है और उसमें लगभग 500 टीचरों की ट्रेनिंग होगी जिसमें 6 बैच बनाने हैं 500 टीचरों की। तो उसमें ट्रेनिंग का अपॉइंट करता है डायरेक्ट प्रचार सर ने मुझे इनामित किया है कि आप ही को ट्रेनिंग की व्यवस्था पूरी देखनी है, कैसे बैच मैनेज होंगे, कैसे कमरे में कहाँ ट्रेनिंग होगी, कौन ट्रेनिंग देगा, और उसमें DM और CDO भी परीक्षण करेंगे आके जब ट्रेनिंग यहाँ चल रही होगी। तो ये सब व्यवस्थाएं मैं देखता हूँ।
तो आपको कुछ चैलेंजेस है इस काम में या सपोर्ट चाहिए, किस तरह की सपोर्ट?
नहीं, सपोर्ट तो मान लीजिए जो भी प्रचार जी मुझे SCERT के जो भी निर्देश होते हैं या महानिदेशक एजुकेशन शिक्षा के जो भी मान लीजिए मुझे निर्देश होते हैं प्रचार के द्वारा जो भी काम किया जाता है तो उसको मैं पूरी ईमानदारी से करता हूँ और मुझे चैलेंज पसंद भी है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे मान लीजिए कि हल्का काम मत दीजिए, जो काम कोई ना कर पाए वो मुझे दीजिए। हमें कहता हूँ सबसे कि जो काम कोई ना करे वो सर आप मुझे दे दीजिए। तो जैसे सर कहते हैं कभी मान लीजिए कभी सर साहब को मीटिंग में जाना हुआ, DM साहब को मीटिंग में जाना हुआ या और कहीं जाना हुआ तो मुझे भेज देते हैं तो मैं चला जाता हूँ, तो वहाँ भी कोऑर्डिनेट करता हूँ। जैसे अभी मान लीजिए मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था परसों, तो वहाँ स्टॉल वगैरह बेसिक शिक्षा का डाइट का लगा था तो मैंने पूरा मैनेज करवाया था, मैंने पूरे स्टॉल लगवाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी समीक्षा प्रशंसा भी की, ठीक है। तो ये एक नहीं होती, उस मीटिंग में भी मैं गया था तो DM साहब को मैंने डाइट करी प्रजेंट भी किया था, मैंने अपने डाइट्स के जो भी मान लीजिए हम लोग अच्छा कर सकते हैं और जो भी प्रदर्शन वहाँ कर सकते हैं कार्यक्रम में उसको मैंने किया भी। और ये भी हुआ कि शिक्षा विभाग को हमने एक छतरी मिला दिया कि जैसे डाइट में बेसिक का और DI साहब का तीनों के स्टाल एक ही जगह लगा हुआ था। तो जैसे है तो हम एक ही परिवार, चाहे बेसिक हो चाहे माध्यमिक हो चाहे डाइट हो, तो हम लोग अगर मिलकर चलेंगे, संगठित होकर के चलेंगे तो हम लोग ज़्यादा विकास करेंगे और हम लोगों को कोई मान लीजिए परास्त नहीं कर सकता। जैसे संगठन में शक्ति होती है वैसे हम लोग अगर मान लीजिए कि फील्ड में अपनी जॉब फील्ड में संगठित होकर के चलेंगे तो कोई नहीं हरा पाएगा और आगे बढ़ेंगे। आप पता चलेगी कोई योजना है तो DS कह देगा कि BSA की है, BSA कह देगा DS के, DSO कह देगा नहीं डायट की है, तो सब अपने अपने काम को एक दूसरे के कंधे पर डालने की कोशिश करेंगे, अब काम नहीं हो पाएगा, गलत नहीं है। तो कोई चाहिए जो सबके काम उठाने वाला। अब DS साहब नहीं है तो मैं कह दूँगा सर आप चिंता मत करिए, आप काम देखिए, मैं DM साहब के यहाँ आपका पक्ष रख लूँगा। ये डायरेक्ट सर को कह दूँगी डायरेक्ट आप चिंता न करिए सर मैं उन्हें देख लूँगा। तो इसलिए अगर मैंने उनको किया है तो कल की अगर मेरी भी जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे नहीं जी जैसे साहब का काम हम देख लेंगे, डायरेक्ट का काम हम देख लेंगे, गलत नहीं मैं कह रहा। तो कदम बढ़ाने की जरूरत होती है भाई, अगर हम दूसरे से नकारात्मक भावनाएं सीख सकते हैं तो हम मान लीजिए कि अपनी अच्छाई से दूसरे को अच्छा ही बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि चुनौती को मान लीजिए या दूसरे को संघर्ष सर बुला रहे हैं तो देख लो थोड़ा कला।